सपनों का क्या है? सपनों में तो ना जाने हम क्या क्या देख लेते हैं, बुरा, अच्छा, अनहोनी, होनी, दुश्मन, दोस्त, राक्षस, देवता। मगर क्या सपने सच दिखाते हैं? क्या आपको कभी ऐसा सपना आया है जिसके बाद आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएं कि ये बस एक ख्वाब था या उससे बढ़कर कुछ और, कुछ कुछ हकीकत जैसा? कहीं ऐसा तो नहीं उस वक्त जिसे आप महज एक ख्वाब समझ रहे हैं वो आपकी ही जिंदगी का एक ऐसा किस्सा हो जिसे आप भूल चुके हों, मगर वो आपके ख्वाबों के जरिए अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना चाहता हो। फिलहाल कहानी के नायक अनंत के साथ तो कुछ ऐसा ही हो रहा है। वो कहानियां शो धूम्रपान, मद्यपान या किसी और प्रकार के व्यसन का समर्थन नहीं करता है और ना ही किसी प्रकार के अंधविश्वास या रूढ़िवादी विचार को बढ़ावा देता है। ये शो केवल कहानियों की एक श्रृंखला है। इसमें वर्णित सभी पात्र, स्थान और घटनाएं काल्पनिक हैं। श्रोताओं को अपने विवेक से फैसला लेने की सलाह दी जाती है। आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट वो कहानियां। प्रस्तुत है सीजन 2 की दूसरी कहानी, कालशंकु, दूसरा अध्याय, भाग 2। लेखन और आवाज दीपक मेड़तवाल, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट मोहित अग्रवाल। समय में 5 दिन पीछे लौटने के बाद अनंत बीते 5 दिनों की सारी बातें भूल चुका था, मगर जिन बातों के साथ इंसान के जज्बात जुड़ चुके हों उन्हें भुलाना आसान नहीं है। अनंत के सपने उसे वही घटनाक्रम बार बार दिखा रहे थे और इस बीच सुशांत ने खजाने वाले बक्से के बारे में बताकर उसे और ज्यादा परेशान कर दिया था। अनंत के दिमाग में कुछ खटक रहा था। वो सोच रहा था, ये खजाना, बक्सा, ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, शायद ऐसा ही कोई सपना देखा था मैंने। अनंत को लग रहा था कि जो बात सुशांत बता रहा है वो उसे कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। इधर सुशांत ने आगे बताया, असल में मेरा यहां डेजर्ट में फोटोग्राफी करने का बहुत मन था, तो जब हमारा दिल्ली जाना कैंसिल हो गया तो मैं कैमरा उठाकर चल दिया फोटोज क्लिक करने, और वहीं किसी लोकल ने मुझे एक ऐसी सुनसान रोड के बारे में बताया जिसे बहुत कम लोग यूज करते हैं। यार क्या रोड थी, रोड थी नहीं, वहीं बीच में मुझे लगा जैसे दूर रेत में कोई चीज चमक रही है, और जब मैं वहां पहुंचा तो वो एक बक्सा था, रेत में कड़ा हुआ बक्सा। मैंने उसे खोलने की काफी कोशिश की बट उसका लॉक खुला ही नहीं, और वजन इतना कि वो बक्सा हिलाया तक नहीं जा रहा था। भाई मैंने काफी कोशिश की लेकिन मुझे उसे छोड़कर वापस आना पड़ा। राज ने कहा, सर तो आप कॉल कर देते ना। सुशांत ने जवाब दिया, कॉल कहां से कर देता, उधर दूर दूर तक नेटवर्क नहीं था। सुशांत का जवाब सुनकर राज के चेहरे पर मायूसी छा गई। सुशांत ने उसके मजे लेते हुए कहा, अब मैं राज जितना ताकतवर तो हूं नहीं कि अकेला ही उस बक्से को उठा लाता। सुशांत की बात सुनकर राज भी हंसने लगा, सर आप लोग हमेशा ही मेरा मजाक बनाते हैं। इधर सुशांत और राज दोनों बात कर रहे थे, वहीं अनंत का सिर घूमने लगा था। वो सोच रहा था कि सुशांत जो कुछ बता रहा है वो उसे जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है, लेकिन काफी सोचने पर भी उसे जवाब नहीं मिला। आखिरकार उसने इस बात को छोड़कर दूसरी बातों में ध्यान लगाना शुरू किया। रात को खाना खाने के बाद सभी लोग अलाव के पास इकट्ठा हो गए। अनंत कुछ गुमसुम सा था लेकिन वो अपने साथियों के साथ देर तक बैठा रहा। आखिर में सभी लोग सोने चले गए। अनंत को काफी देर तक नींद नहीं आई लेकिन एक बार नींद आने के बाद वो अगले दिन दोपहर तक सोता रहा। दोपहर में उसकी नींद किसी आवाज से खुली। ऐसा लग रहा था जैसे बाहर किसी भारी चीज को खींचकर लाया जा रहा हो। वो उठकर अपने कमरे से बाहर आ गया। आवाज बगल वाले कमरे से आ रही थी जहां सुशांत, राज और ज्ञान एक पुराने से बक्से को खोलने की कोशिश कर रहे थे। तो ये लोग उस बक्से को ले आए हैं, अनंत ने अपने आप से कहा और कमरे में अंदर चला गया। कमरे में मौजूद तीनों लोग उस बक्से की वजह से इतने एक्साइटेड थे कि उनमें से किसी का भी ध्यान अनंत पर नहीं गया। अनंत चुपचाप कमरे में घट रही गतिविधि को देखने लगा। सुशांत पेचकस और हथौड़ा लेकर बॉक्स के ताले को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी राज ने बीच में ही कहा, सुशांत सर, इज इट नेसेसरी टू ब्रेक द लॉक। सुशांत राज की बात सुनकर हंसने लगा और उसने ताले पर हथौड़ा दे मारा। लेकिन हथौड़े का निशाना कुछ चूक गया और सुशांत को चोट लगते लगते बची। अब सुशांत ने कुछ गुस्से से राज की तरफ देखा, जैसे राज के टोकने की वजह से ही हथौड़ा अपने निशाने से चूक गया था। राज ने कंधे उचका दिए। सुशांत एक बार फिर से ताले पर हथौड़ा मारने के लिए तैयार हो गया, लेकिन तभी ड्राइवर ज्ञान ने बीच में टोका,
सर आप पीछे हटिए, मैं कोशिश करता हूं।
ज्ञान ने जिस कॉन्फिडेंस से कहा उसकी वजह से सुशांत पीछे हट गया। ज्ञान कुछ पिन, तार, पेचकस और हथौड़ा लेकर ताले का ऑपरेशन करने में जुट गया। तभी सुशांत की निगाह अनंत की तरफ गई, जो बड़े आश्चर्य के साथ ये सब देख रहा था। उसने कहा,
सुबह तू सो रहा था, हमने सोचा आज तुझे आराम करने देते हैं।
लेकिन अनंत का ध्यान जैसे उसकी कही बात पर था ही नहीं। असल में वो तो ज्ञान को ताले से जूझते देख आश्चर्य में डूबा हुआ था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि ज्ञान जल्द ही ताला खोल देगा। और अगले ही पल अनंत के आश्चर्य की सीमा नहीं रही, क्योंकि ज्ञान ने वाकई में ताला खोल दिया। यह देख सुशांत बोल पड़ा, ज्ञान तेरा ये टैलेंट मुझे पता नहीं था, तू पार्ट टाइम ताले तोड़ा करता है क्या? ज्ञान हंसते हुए बोला,
सुशांत सर।
लेकिन इसके बीच में ही अनंत के मुंह से बरबस ही निकल पड़ा,
तुम्हारे ताले चाबी की दुकान थी और तुम बचपन से ही तालों को खोलने और तोड़ने का काम करते आ रहे हो।
अनंत की बात सुनकर ज्ञान ने हैरानी से कहा, अनंत सर आपको ये कैसे पता?
मैंने तो कभी आपको इस बारे में बताया तक नहीं।
ज्ञान की बात सुनकर अनंत का आश्चर्य और भी बढ़ गया, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं, क्योंकि वो अब अंदाजा लगा रहा था कि बक्से में से क्या निकलने वाला है। अब तक सुशांत ताला हटाकर बक्से का कुंदा खोलने लग गया था। बरसों से बंद पड़े कुंदे को खोलने में उसे खासी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन आखिरकार बक्सा खुल ही गया। बक्सा खुलते ही अनंत को छोड़कर बाकी सभी लोग कौतूहल के साथ उस बक्से के पास जमा हो गए। बक्से में काफी सारी रेत के अलावा कुछ पुराने सामान जैसे कांसे के बर्तन वगैरह भी थे। अनंत का आश्चर्य बढ़ता जा रहा था, उसे लग रहा था कि यह सब कुछ वो सपने में देख चुका है। तभी सुशांत ने बक्से में से मखमल के कपड़े में लिपटी एक भारी सी चीज को उठाया और कहा, इसमें क्या है? अनंत बुदबुदाया, इसमें नहीं नहीं नहीं। तब तक सुशांत ने कपड़े को खोलकर उसमें से एक भारी भरकम चीज को देखते हुए कहा, क्या है ये
तो?
अनंत ने धीरे से कहा,
ये तो वही है, एक कोन।
सुशांत ने अनंत की बात सुनकर कहा, हाँ ये तो एक कोन है, लेकिन मैंने ऐसी चीज आज तक नहीं देखी है, ये किस मेटल का बना हुआ है, कांसे का है क्या? अनंत के मुंह से निकला,
नहीं ये कांसा नहीं है, कांसा इतना भारी नहीं होता है।
अनंत की बात सुनकर सुशांत ने उस कोन को हाथ से हिलाकर वजन का अंदाजा लगाते हुए कहा,
हाँ तू सही कह रहा है, कांसा इतना भारी नहीं होता है,
लेकिन तूने तो इसे हाथ में भी नहीं लिया, फिर तुझे कैसे पता कि यह कितना भारी है? उसने अनंत की तरफ देखा, लेकिन अनंत का ध्यान उस कोन की तरफ ही था, इसलिए उसने फिर से उस कोन को ढंग से देखना शुरू कर दिया। सुशांत उस कोन को उलट पलट कर देख रहा था। उसने कहा,
यहां कुछ निशान है, ये एक लाइन जैसी, वेव जैसी कोई डिजाइन बनी हुई है और कुछ डॉट बने हैं इस पर, एक दो तीन।
सुशांत इस कोन पर बने बिंदुओं को गिन रहा था, लेकिन अनंत ने बीच में ही कहा,
पांच डॉट हैं इस पर।
तब तक सुशांत भी गिन चुका था, वहां पांच डॉट ही थे। उसने अनंत से कहा,
वाह क्या गैस लगाया है, ठीक पांच डॉट हैं इस पर।
सुशांत की बात सुनकर अनंत का आश्चर्य और भी बढ़ गया था। वो सोचने लगा,
ये सब क्या हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ये सब देखा है, मैंने ये सब शायद सपने में देखा था, और अगर ये सब वाकई में घट रहा है तो इस बक्से में कुछ और भी होना चाहिए, लेकिन क्या, मुझे ढंग से याद नहीं आ रहा है, शायद कांसे की एक प्लेट।
अनंत ये सब सोच ही रहा था कि तभी राज ने बक्से में निकले सामानों में से एक कांसे की गोल प्लेट हाथ में ली और उस पर कुछ पढ़ने की कोशिश करने लगा,
इस प्लेट पर कुछ लिखा हुआ है, क्या है ये?
तभी अनंत के दिमाग में कुछ कौंधा और उसे एक नाम याद आया,
गोपाल दास,
हां यही लिखा होना चाहिए उस प्लेट पर। राज ने आगे कहा,
गोपाल दास
और इस पर कोई नंबर भी लिखा है। सुशांत ने हंसते हुए कहा,
गोपालदास का फोन नंबर लिखा होगा। ज्ञान और राज उसके इस मजाक पर हंसने लगे। तभी अनंत का ध्यान किसी बात पर गया और उसने वो कपड़ा जिसमें शंकु लपेट कर रखा गया था वो उसे उठाकर बारीकी से देखने लगा। वहां ठीक वही लिखा था जिसके बारे में उसने सोचा था। उसने कहा, यहां भी गोपालदास ही लिखा हुआ है और इस पर कुछ नंबर लिखे हैं। ये नंबर नहीं है, ये हिंदी तारीख मतलब हिंदी तिथि है और उस प्लेट पर भी यही तिथि लिखी हुई है। सुशांत ने प्लेट और कपड़े पर लिखी तारीखों का मिलान किया। हाँ, ये तो सेम टू सेम चीज लिखी है, लेकिन इसका क्या मतलब है, क्या डेट होगी ये? सुशांत सोच ही रहा था कि राज ने कहा, सर मैं इस तारीख को ग्रेगोरियन कैलेंडर में कन्वर्ट करके देखता हूं। उसने तुरंत अपना आईपैड निकाला और इंटरनेट पर उस तिथि को ग्रेगोरियन तारीख यानी अंग्रेजी कैलेंडर की तारीख में बदलकर देखा और कहा, सर ये तारीख है। लेकिन राज के कुछ बोलने से पहले ही अनंत ने बीच में कहा, 15 फरवरी 1919, 15 फरवरी 1919। राज ने आश्चर्य के साथ कहा, एग्जैक्टली सर, लेकिन आपने इतनी फास्ट कैलकुलेशन कैसे कर ली? अब सारी बातें अनंत के बर्दाश्त से बाहर थी। वो जोर से बोला, नो इट कांट बी पॉसिबल। सभी लोग उसका चेहरा गौर से देखने लगे। सुशांत ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, वॉट कांट बी पॉसिबल, एवरीथिंग ओके विद यू? अनंत हैरत के साथ सभी के चेहरों को देखने लगा और उसने एक झटके में अपने कंधे से सुशांत का हाथ झटक कर उस शंकु को दोनों हाथों से उठा लिया। शंकु को उठाते ही उसे जैसे कुछ महसूस हुआ। उसने शंकु को कसकर पकड़ लिया और आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों के सामने कुछ अस्पष्ट से चित्र तैरने लगे, ऐसे चित्र जो उसे जाने पहचाने तो लग रहे थे लेकिन वो उनका कोई मतलब नहीं समझ पा रहा था। उसे भले ही कुछ समझ नहीं आया लेकिन एक बात उसे समझ आ गई कि ये जो कुछ हो रहा है उसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। अनंत ने आंखें खोलकर उस शंकु को गौर से देखना शुरू किया। बाकी सभी लोग हैरानी से उसके इस बर्ताव को देख रहे थे। अनंत ने उस शंकु को वापस से बक्से में रख दिया और सुशांत से कहा, सुशांत लीव इट, इस चीज को अभी छोड़ दो, इसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। अनंत व्हाट इज दिस, आर यू ओके, क्या कह रहा है तू, तुझे कुछ पता भी है और किस अंजाम की बात कर रहा है? अनंत ने गंभीर स्वर में कहा, तुम लोग मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे लेकिन मैं ये सब पहले भी देख चुका हूं। क्या सब देख चुका है? यही सब कि हम लोगों को रेत में एक बक्सा मिलता है और बक्से में से कौन निकलता है। आर यू क्रेजी, तूने कहां देख लिया है पहले? अनंत ने कुछ हिचकिचाहट के साथ कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सपने में ये सब कुछ देख चुका हूं। ये अभी जो कुछ हुआ मुझे इसके बारे में पहले से पता था। सुशांत ने अनंत की तरफ देखा, फिर अपने साथियों की तरफ देखा और फिर कहा, अनंत परसों रात को तू जिस बंदे के साथ गया था वो ड्रग सप्लाई करता है, मुझे पक्का यकीन हो गया है कि उसने तुझे कोई हाई पावर का ऐसा नशा दे दिया है जिसकी वजह से तुझे हेलुसिनेशंस हो रहे हैं। अनंत ने उकताते हुए कहा, सुशांत ये हेलुसिनेशंस नहीं है। चल तू मुझे बता, मुझे कैसे पता कि ज्ञान के घर पर ताले चाबी की दुकान थी? मुझे कैसे पता कि इस बक्से में कौन ही निकलेगा? मुझे कैसे पता कि जो हिंदी तिथि इसमें लिखी है उसकी इंग्लिश कैलेंडर में तारीख 15 फरवरी 1919 है? थोड़ी देर के लिए वहां सन्नाटा छा गया। तभी सुशांत ने कुछ सोचते हुए कहा, क्या तारीख लिखी है यहां? 15 फरवरी 1919, और आज है 10 फरवरी 2019, यानी आज से कोई 100 साल पहले। मतलब पिछले 100 सालों से यह बक्सा रेत में गड़ा रहा और कोई 100 साल बाद फिर से खोला गया है। कुछ ना कुछ तो जरूर है सबके पीछे। ये चीज 100 सालों तक जमीन में गड़ी रही और अब 100 साल बाद अचानक से जमीन से बाहर आ गई है। इस सबके पीछे कुछ ना कुछ तो जरूर है। तुझे नहीं लगता कि हमें इस पर कुछ रिसर्च करनी चाहिए? क्या पता इस सबके पीछे कोई बहुत बड़ा सीक्रेट हो। अनंत ने कहा, सुशांत मेरी बात को सीरियसली ले, मुझे लग रहा है कि आगे बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। हमें आज अभी दिल्ली के लिए निकलना चाहिए। क्या यार, तो फिर से दिल्ली की रट लगाकर बैठ गया है? अनंत ने कुछ जोर से कहा। सुशांत तू समझ नहीं रहा है कि क्या होने वाला है।
तो तू बता दे क्या होने वाला है। अनंत चुप हो गया। फिर उसने कहा, जो भी कुछ हो लेकिन इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं फील कर रहा हूं, इट्स नॉट सेफ, इट्स नॉट गुड। राज, ज्ञान, एटलीस्ट तुम लोग मेरी बात मानो और यहां से चलो। राज और ज्ञान दोनों चुप थे, लेकिन सुशांत अनंत की बात मानने को तैयार नहीं था। थोड़ी देर तक दोनों में बहस होती रही। आखिर में सुशांत ने कहा, चल ठीक है, तेरी बात मान ली, हम लोग दिल्ली चलेंगे, लेकिन अभी नहीं, कल सुबह हम जल्दी दिल्ली के लिए निकल लेंगे। यह कहकर सुशांत वहां से बाहर चला गया और उसने सिगरेट सुलगा ली। ज्ञान और राज भी वहां आ गए और अनंत के बिहेवियर को लेकर बात करने लगे। सुशांत ने कहा, अनंत जरूर किसी ड्रग के असर में है, उसे हेलुसिनेशन हो रहे हैं। राज ने पूछा, लेकिन सर ये कैसा ड्रग, इतने लंबे टाइम तक हेलुसिनेशन, और फिर अनंत सर की सारी रिपोर्ट्स भी तो नॉर्मल आई थी। सुशांत ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर कुछ सोचकर कहा, राज पता नहीं क्यों लेकिन मुझे उस बक्से के सामानों का सीक्रेट पता करना है। ये स्ट्रेंज नहीं है क्या कि उस बक्से में जो सामान रखे हैं उन पर 100 साल पहले की डेट है? और फिर एक बात और, मैंने अपनी जिंदगी में उस कोन की जैसी कोई चीज नहीं देखी है, ना किसी बुक में ऐसी किसी चीज के बारे में पढ़ा है। कुछ तो है यार इसमें, एक ट्राई करते हैं, वरना दिल्ली तो जाना ही है। तो ऐसा कर, नेट पर पता कर ऐसी कोई चीज कहीं पर मिल जाए तो, मैं भी थोड़ा अपने लेवल पर मालूम करता हूं। ओके सर। आधी रात से ज्यादा का वक्त हो चुका था। कमरे में राज और सुशांत दोनों बक्से से मिले सामानों की गुत्थी सुलझाने की कोशिशों में जुटे थे, लेकिन अभी तक उनके हाथ खाली ही थे। दूसरी तरफ अनंत के अजीब व्यवहार को देखते हुए सुशांत ने उससे दूरी बना ली थी। उसने सोच लिया था कि वो अब अनंत से इस बारे में कोई बात नहीं करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो अनंत को मिस भी कर रहा था। उसने राज से कहा, यार अगर अनंत साथ होता ना तो मजा आ जाता। लैपटॉप में आंखें गड़ाए राज ने कहा, हां सर, वो तो इस वक्त हमको लीड कर रहे होते, मगर। राज चुप हो गया। सुशांत ने भी कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद राज ने कहा, सुशांत सर, अनंत सर के साथ क्या प्रॉब्लम हो सकती है? डॉक्टर के अकॉर्डिंग तो वो पूरी तरह से फिट हैं। आई डोंट थिंक ये किसी ड्रग का असर हो सकता है। सुशांत ने राज की तरफ देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, देख ये छोटी जगह है, हो सकता है कि टेस्ट में सारी चीजें निकल कर नहीं आ पाई हूं, बट आई नो अनंत, ही विल बी ओके सून। सुशांत ने अपनी बात पूरी की ही थी कि तभी बिजली चली गई। सुशांत के मुंह से बरबसी निकल पड़ा, व्हाट द। लैपटॉप की हल्की रोशनी में सुशांत के चेहरे पर झुंझुलाहट दिखाई दे रही थी। राज को हंसी आ गई। राज को हंसता देख सुशांत भी हंसने लगा और अपना सिगरेट का पैकेट उठाकर खिड़की के पास चला गया। खिड़की खोलते ही बाहर से ठंडी हवा कमरे में आने लगी। सुशांत ने राज की तरफ देखा, जिसने अपने सिर पर ऊनी टोपी डाल ली थी। सुशांत बाहर की ठंडी हवा में सिगरेट के कष्ट लगाने लगा, जबकि राज लैपटॉप पर ही काम कर रहा था। थोड़ी देर बाद राज को लगा जैसे उसका फोन वाइब्रेट कर रहा है। उसने अपने फोन को देखा, लेकिन उसके फोन में कोई कॉल या नोटिफिकेशन नहीं था। उसने आवाज लगाई, सुशांत सर, आपका फोन आ रहा है। सुशांत ने उसकी तरफ देखा और बगैर कुछ कहे अपनी जेब में से फोन निकालकर उसे दिखा दिया। राज ने कहा, फिर किसका फोन वाइब्रेट कर रहा है? तभी राज की निगाह टेबल पर गई। वो चौंक पड़ा। उसने धीरे से सुशांत को आवाज दी, सुशांत सर पहले इधर आइए। राज की आवाज का टोन सुनकर सुशांत ने सिगरेट वहीं छोड़ दी और भागकर उसके पास आया। राज को कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जो हो रहा था वो सुशांत को चौंकाने के लिए काफी था। असल में कंपन टेबल पर रखे शंकु में हो रहे थे। आप सुन रहे थे काल शंकु दूसरा अध्याय, पॉडकास्ट वो कहानियां पर। यह था भाग 2। लेखन और आवाज दीपक मेड़तवाल, इन एसोसिएशन विद पिक्सल सिटी प्रोडक्शंस।